एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई के मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
हाँ, ये किताब असल में इसी कला के बारे में है कि हम दूसरों को सच में मतलब गहराई से कैसे समझें,
और ये भी कि कैसे हम खुद को भी दूसरों के सामने सही से रख पाएं ताकि वो हमें समझ सकें।
और ये आज के जमाने में कितना जरूरी हो गया है ना। मतलब टेक्नोलॉजी ने हमें जोड़ा तो है, पर कई बार लगता है कि हम शायद पहले से ज्यादा अकेले हैं।
बिल्कुल, रिश्ते ऊपरी तौर पे तो बहुत दिखते हैं, पर वो गहरी समझ, वो कनेक्शन, वो कहीं गायब सा है।
हाँ, वही लगता है जैसे हम सब साथ होकर भी तन्हा हैं, और शायद ये किताब इसी अकेलेपन और सतहीपन का एक तरह से जवाब देने की कोशिश करती है।
सही कहा, यह हमें सिखाती है कि इस शोर शराबे से परे जाकर हम एक दूसरे के साथ कैसे सच्चे गहरी मानवीय रिश्ते बना सकते हैं। और ये सिर्फ मतलब अच्छा व्यवहार करने की बात नहीं है, यह हमारी जरूरत है, शायद समाज की भी।
तो इस अहम विषय पर लिखने वाले लेखक डेविड ब्रुक्स, थोड़ा उनके बारे में जानते हैं, कौन है यह?
हाँ, डेविड ब्रुक्स एक जाने माने कनाडी अमेरिकी लेखक हैं, विचारक हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स में उनका कॉलम बहुत पढ़ा जाता है
और पीबीएस न्यूज आर पर भी उनकी टिप्पणियां आती हैं राजनीति और समाज पर।
अच्छा, और उनकी दूसरी किताबें भी हैं, है ना, जैसे द सोशल एनिमल।
हाँ, द सोशल एनिमल और द रोड टू कैरेक्टर भी काफी प्रभावशाली रही हैं। इनमें वो आमतौर पर इंसान के स्वभाव, समाज, नैतिकता और एक सार्थक जीवन का मतलब क्या है, इन सब पर गहराई से बात करते हैं।
दिलचस्प बात यह है कि ब्रुक्स इस विषय पर, मतलब दूसरों को समझने की कला पर, एक बहुत ही अनोखे नजरिए से लिख रहे हैं। हाँ, क्योंकि उन्होंने सालों तक अमेरिकी समाज और राजनीति का विश्लेषण किया है, लेकिन पिछले कुछ सालों में उनका फोकस बदला है। राजनीति से हटके वो चरित्र, नैतिकता और सामाजिक जुड़ाव जैसे ज्यादा बुनियादी सवालों पर आ गए हैं।
और उनकी लिखने की स्टाइल कैसी है, मतलब सिर्फ एकेडमिक बातें हैं?
नहीं नहीं नहीं, वही तो खास बात है, वो सिर्फ किताबी बातें या रिसर्च नहीं बताते, बल्कि उसमें फिलॉसफी और अपने निजी अनुभव भी मिलाते हैं। वो खुलकर ये भी मानते हैं कि पहले उन्हें भी दूसरों से जुड़ने में दिक्कतें आती थी।
ओह, अच्छा, ये ईमानदारी तो बात को और वजनदार बना देती
है। बिल्कुल, लगता है कि वो सिर्फ उपदेश नहीं दे रहे बल्कि खुद भी इस रास्ते से गुजरे हैं, भरोसेमंद लगता है।
चलिए अब आते हैं किताब के मूल विचार पर, हाउ टू नो अ पर्सन। क्या है ये असल में?
देखिए, ये कोई रहस्यमय कला की किताब नहीं है, ये एक व्यवहारिक गाइड है, एक तरह की हैंडबुक। और इसका सबसे बड़ा दावा ये है कि दूसरों को वाकई समझना और उनसे जुड़ना, ये कोई पैदाइशी हुनर नहीं है जो बस कुछ ही लोगों में होता है।
हाँ, ये बहुत जरूरी बात है कि ये एक सीखा जा सकने वाला कौशल है, एक स्किल।
एग्जैक्टली, कोई भी मेहनत करके इसे सीख सकता है, डेवलप कर सकता है। किताब का तर्क है कि हमारे समाज में जो अकेलापन है, जो दूरियां हैं, लोगों में जो ध्रुवीकरण है, उसका इलाज बड़े नियमों में नहीं है।
तो फिर कहाँ है
इलाज? है एक दूसरे को सच में देखने में, सुनने में, समझने में। ये किताब हमें तरीके सिखाती है कि हम कैसे दूसरों को ये महसूस करा सकें कि हाँ, उन्हें देखा गया, सुना गया और उनका महत्व है।
ये सिर्फ किसी को अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं है, है ना, इसका मकसद बड़ा है।
हाँ बिल्कुल, ये समाज को जोड़ने का, रिश्तों को गहरा बनाने का एक जरिया है। ब्रुक्स का मकसद है इस पूरी प्रक्रिया को आसान बनाना, कि कैसे करें ये सब। वो बताते हैं कि इसके लिए किस तरह की सोच चाहिए, कौन से हुनर जरूरी हैं, बातचीत में क्या करें। और वो एक बहुत खूबसूरत बात कहते हैं कि किसी दूसरे इंसान पर उदारता से पूरी तवज्जो देना, ये शायद प्यार और सम्मान जताने का सबसे गहरा तरीका है। और ये सिर्फ उसे नहीं बदलता जिस पे ध्यान दिया जा रहा है, ध्यान देने वाला भी बदलता है।
वाह, तो अब जरा और गहराई में उतरते हैं, किताब शुरू कैसे होती है?
किताब की शुरुआत होती है आज के समाज की एक तस्वीर से। ब्रुक्स कहते हैं कि हम अक्सर अनजाने में ही सही दूसरों को कमतर आंकते हैं, उन पर लेबल चिपका देते हैं या उन्हें सिर्फ उनकी उपयोगिता के हिसाब से देखते हैं। इस रवैये को वो कहते हैं डिमिनिशिंग, मतलब किसी को छोटा करना।
डिमिनिशिंग यानी महत्वहीन बना देना।
और इसके उलट है हर इंसान की एक गहरी इच्छा कि उसे वैसे ही देखा और समझा जाए जैसा वो असल में है, किसी बने बनाए खांचे में फिट करके नहीं। यहीं पर ब्रुक्स अपना सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट लाते हैं, इल्यूमिनेटर्स बनाम डिमिनिशर्स।
इल्यूमिनेटर्स मतलब रोशनी डालने वाले, और डिमिनिशर्स धुंधला करने वाले।
हाँ, कुछ ऐसा ही। डिमिनिशर्स वो लोग हैं जो अक्सर खुद में खोए रहते हैं, बहुत जल्दी दूसरों के बारे में राय बना लेते हैं और अपनी बातों या व्यवहार से सामने वाले को छोटा या अनदेखा महसूस करा देते हैं। बातचीत में हावी होना चाहते हैं, अपनी ही सुनाना चाहते हैं।
अच्छा, और इल्यूमिनेटर्स?
इल्यूमिनेटर्स उदार जिज्ञासा मतलब जेनरस क्यूरोसिटी से भरे होते हैं। वो मानते हैं कि हर इंसान जटिल है, अनूठा है। उनमें वो हुनर होता है कि वो दूसरों को खुलने में मदद करते हैं। उन्हें महसूस कराते हैं कि उन्हें सम्मान दिया जा रहा है, समझा जा रहा है। ब्रूक्स कहते हैं कि ये किताब असल में एक इल्यूमिनेटर बनने की ट्रेनिंग गाइड है, हमें वो बनने में मदद करती है जो दूसरों को रोशन कर सके।
तो सवाल उठता है कि ये इल्यूमिनेटर बनाया कैसे जाए, पहला कदम क्या है?
पहला कदम है सही नजरिया, सही माइंडसेट। ब्रूक्स बौद्धिक विनम्रता पर बहुत जोर देते हैं।
बौद्धिक विनम्रता, इसका मतलब क्या हुआ आसान शब्दों में?
सीधा सा मतलब है ये मानना कि किसी के बारे में आपकी पहली राय, आपका पहला इंप्रेशन लगभग हमेशा अधूरा होता है, या शायद गलत भी।
ये मानना थोड़ा मुश्किल है कई बार।
है, लेकिन जरूरी है। हमें दूसरों को एक आश्चर्य, एक वंडर के भाव से देखना चाहिए, उनमें सच्ची दिलचस्पी लेनी चाहिए। अपने अहंकार को, हमेशा सही साबित होने की इच्छा को, और खासकर बिना मांगे सलाह देने की आदत को थोड़ा साइड में रखना होगा।
हाँ, ये सलाह वाली बात तो बहुत कॉमन है।
बिल्कुल। लक्ष्य ये नहीं कि हम जज बने या किसी की समस्या सुलझाने कूद पड़े। लक्ष्य है एक साथी यात्री, फेलो ट्रैवलर जैसा रवैया अपनाना। जैसा ब्रूक्स याद दिलाते हैं, लोग अक्सर हमारे समाधान नहीं चाहते, वो बस हमारा प्यार भरा ध्यान चाहते हैं, लविंग अटेंशन।
बातचीत की कला पर आते हैं, और इसमें सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी है ध्यान देने की कला, आर्ट ऑफ अटेंशन।
ध्यान देना मतलब सिर्फ सुनना?
सुनने से ज्यादा किसी को अपना पूरा बिना बंटा हुआ ध्यान देना, ये एक बहुत शक्तिशाली नैतिक तोहफा है। और ये आजकल कितना मुश्किल हो गया है, हम बात किसी से कर रहे होते हैं और दिमाग फोन में या कहीं और होता है।
हाँ, ये तो है, मल्टीटास्किंग के नाम पर ध्यान बट जाता है।
वही ब्रूक्स कहते हैं कि सच्चा ध्यान जो फोकस्ड हो, जिसमें धैर्य हो, जो टूटे नहीं, वो शब्दों से कहीं ज्यादा गहराई से सम्मान और महत्व का एहसास कराता है। ये बिना बोले कहता है, आप मेरे लिए इस पल में सबसे महत्वपूर्ण हैं।
ध्यान देने के साथ और क्या जरूरी है?
इसके साथ जुड़ा है अच्छे सवाल पूछने का हुनर, आस्किंग ग्रेट क्वेश्चंस। ये भी इल्यूमिनेटर बनने के लिए बेहद जरूरी है। सतही सवालों से आगे बढ़ना होगा, जैसे और सब बढ़िया से आगे।
तो कैसे सवाल, कुछ उदाहरण है?
हाँ, किताब में कुछ अच्छा उदाहरण है। ऐसे सवाल पूछें जो सामने वाले को अपनी कहानी कहने का मौका दें, जो उनकी प्रेरणाओं, उनके मूल्यों को कुरे दें। जैसे, आप जिंदगी के इस पड़ाव को कैसे देखते हैं, या कोई ऐसा वाक्या बताएं जिसने आपको बदल दिया हो, या फिर आप जहां पले बढ़े वो जगह कैसी थी और उसका आप पर क्या असर रहा।
ये सवाल तो सोचने पर मजबूर करते हैं।
बिल्कुल, ये बंद दरवाजों की तरह नहीं बल्कि खिड़कियों की तरह हैं, जो किसी की अंदरूनी दुनिया में झांकने का रास्ता खोलते हैं। ब्रूक्स कहते हैं, एक अच्छा सवाल सम्मान का संकेत है। ये संकेत है कि आप जवाब से बदलने को तैयार हैं। ये विनम्रता दिखाता है।
ठीक है, ध्यान देना हो गया, अच्छे सवाल पूछ लिए, अब क्या? अब आता है सुनना।
हाँ, अब आता है सुनने का अनुशासन, डिसिप्लिन ऑफ लिसनिंग। और ये सिर्फ चुपचाप बैठना नहीं है, ये एक सक्रिय काम है, पैसिव नहीं।
सक्रिय सुनना मतलब?
इसके लिए वो एक तकनीक सुझाते हैं, लूपिंग। इसका मतलब है आपने जो सुना उसे अपने शब्दों में दोहराकर पुष्टि करना। जैसे, तो अगर मैं सही समझ रहा हूं तो आप कह रहे हैं के, या अच्छा तो आपके कहने का मतलब है के।
अच्छा, इससे क्या होता है?
ये छोटा सा कदम सामने वाले को ये महसूस कराता है कि उन्हें सच में सुना जा रहा है, उनकी बात को समझने की कोशिश हो रही है। और यह सिर्फ शब्दों को सुनना नहीं है, बल्कि उनके पीछे की भावनाओं को, मूल्यों को, अनकही बातों को भी सुनना है।
सुनने के साथ ही एक और जरूरी बात थी, स्पॉटलाइट दूसरे पर रखना।
हाँ, दूसरे व्यक्ति को मुख्य पात्र बनाना, मेकिंग द अदर पर्सन द मेन कैरेक्टर। एक अच्छा वार्तालाप करने वाला स्पॉटलाइट हमेशा दूसरे पर रखता है, खुद पर नहीं। अपनी कहानियां सुनाइए, मगर कम, सिर्फ तब जब उसे सामने वाले को अपनी बात कहने में मदद मिले या तालमेल बने। लक्ष्य अपनी विद्वत्ता दिखाना नहीं बल्कि दूसरे को चमकने देना है।
हाँ, ये तो काफी कुछ है सीखने को, और किताब हमें और गहराई में ले जाती है।
हाँ बिल्कुल, ब्रूक्स कहते हैं कि किसी इंसान को सच में जानने के लिए हमें उसे सिर्फ आज में नहीं बल्कि चार आयामों, 4D में देखना होगा।
चार आयाम? हाँ। वो कौन से हैं?
संक्षेप में कहें तो, पहला उनका अतीत, बचपन, परिवार, फॉर्मेटिव एक्सपीरियंसेस जिन्होंने उन्हें घड़ा। दूसरा उनका वर्तमान, आज की उनकी चुनौतियां, खुशियां, वो क्या कर रहे हैं। तीसरा उनका भविष्य, उनकी उम्मीदें, डर, सपने वो क्या बनना चाहते हैं, और चौथा सबसे गहरा, उनकी आंतरिक गहराई, उनके एहसास, उनके मूल सिद्धांत, उनकी आत्मा जीवन में क्या खोज रही है।
वाह, ये तो किसी को बहुत गहराई से समझने की बात है। ये आसान नहीं होगा।
आसान नहीं है, पर नामुमकिन भी नहीं। ये हमें सिखाता है कि लोगों को किसी टाइप में बांटने से, जैसे इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, इससे आगे बढ़कर उनकी पूरी जटिलता को समझें, उनके हाव भाव, उनकी अनकही बातों को सुने, धीरे धीरे सम्मान से उनकी जिंदगी के कहानी के बारे में पूछें। ये किसी इंसान की पूरी तस्वीर देखने की कोशिश है।
लेकिन रिश्ते हमेशा आसान नहीं होते। असहमति होती है, दुख आता है, इस पर भी बात की है ब्रुक्स ने।
हाँ, की है। रचनात्मक असहमति, कंस्ट्रक्टिव डिसएग्रीमेंट के बारे में वो कहते हैं कि किसी को जानना हमेशा हाँ में हाँ मिलाना नहीं है। जरूरी ये है कि हम दूसरे को नीचा दिखाए बिना, उसे गलत साबित किए बिना असहमत कैसे हों।
ये कैसे करें, अक्सर तो बहस बढ़ जाती है।
वो सलाह देते हैं कि हम संघर्ष के पीछे के सवाल, यानी क्वेश्चन बिहाइंड द कॉन्फ्लिक्ट को ढूंढे, यानी वो कौन सी मूल चिंता या मूल्य हैं जिस पर दोनों पक्ष अलग अलग नजरिए से पहुंच रहे हैं। मकसद बहस जीतना नहीं, बल्कि असहमति की जड़ को समझना है।
और दुख के समय के लिए, जब कोई मुश्किल दौर से गुजर रहा हो।
हाँ, और फिर आता है किताब का शायद सबसे दिल को छूने वाला विचार, अकम्पनीमेंट, मतलब साथ देना, हमराई बनना।
अकम्पनीमेंट,
सोचिए जब कोई मुश्किल दौर से गुजर रहा हो, कोई दुख, बीमारी, नाकामी, हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? हम सलाह देने लगते हैं, हौसला बढ़ाने वाली बातें कहते हैं, सब ठीक हो जाएगा का दिलासा देते हैं।
हाँ, अक्सर यही करते हैं, मदद करने की कोशिश में।
पर ब्रूक्स कहते हैं कि ये अक्सर अनजाने में सामने वाले के दुख को कम आंकना या उसे खारिज करना जैसा हो सकता है। ये डिमिनिशिंग का ही एक रूप है। असली मदद, सच्चा तोहफा शायद ये है कि हम उनके दर्द में बस उनके साथ मौजूद रहें, उन्हें अकम्पनी करें।
मतलब सिर्फ साथ होना, कुछ कहना या करना नहीं।
माँ, मतलब बिना जज किए सुनना, बस एक स्थिर उपस्थिति देना, उनके दुख को स्वीकार करना, उसे मान्यता देना। जैसा ब्रूक्स कहते हैं, जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होते हैं जो घाटी में है, तो आपका काम उन्हें उससे बाहर निकालना नहीं है, आपका काम उनके साथ उसमें बैठना है, आपका काम साथ देना है।
ये तो बहुत गहरा विचार है, किसी के साथ अंधेरे में चुपचाप बैठ जाना।
हाँ, बजाय इसके कि हम उन्हें उस रोशनी की तरफ धकेलें जिसे वो उस पल देख ही नहीं पा रहे। ये बहुत शक्तिशाली विचार है।
वाकई। चलिए अब कुछ मुख्य विषयों और संदेशों को समेटते हैं इस किताब से। पहला क्या होगा?
पहला और शायद सबसे अहम, कि दूसरों पर गहरा बिना जज किए ध्यान देना, ये सिर्फ अच्छी आदत नहीं, ये एक नैतिक जिम्मेदारी, मोरल इम्पेरेटिव है। ये सामने वाले के इंसान होने का सम्मान है।
दूसरा,
ये इल्यूमिनेटर बनाम डिमिनिशर का फ्रेमवर्क, ये हमें हर बातचीत में एक चॉइस देता है, हम क्या बनना चाहते हैं, रोशनी फैलाने वाले या धुंधला करने वाले।
सही।
तीसरा, ये सोच की जुड़ाव एक सीखा जा सकने वाला हुनर, लर्नेबल स्किल है, ये बहुत उम्मीद देता है। मतलब हम सब अपने रिश्ते बेहतर बना सकते हैं, कोशिश करनी होगी।
चौथा,
जिज्ञासा और बौद्धिक विनम्रता, क्यूरियोसिटी एंड इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी ही गहरे जुड़ाव की नींव है, ये मानना कि हम सब नहीं जानते, खासकर किसी और के बारे में।
पांचवा,
कहानी की ताकत, पावर ऑफ स्टोरी, लोगों को उनकी कहानियों से समझें, और जब कोई अपनी कहानी सुनाए तो उसके अच्छे रखवाले बने, स्टूअर्ड बने।
छठा पॉइंट भी था शायद।
हाँ, छठा, साथ देना, सलाह देने या समस्या सुलझाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है, खासकर दुख के समय। हमारे समाज में अक्सर तुरंत फिक्स करने की प्रवृत्ति होती है, ये हमें रुककर सिर्फ साथ होने की अहमियत याद दिलाता है।
और सातवां, आखिरी।
सातवां, समाज का सुधार व्यक्तिगत जुड़ाव से शुरू होता है, सोशल रिपेयर। आज जो दूरियां हैं, ध्रुवीकरण है, उसका इलाज शायद नीतियों में उतना नहीं जितना उन लोगों में भी इंसानियत देखने में है जिनसे हम असहमत हैं। एक एक करके रिश्ते बनाना ही समाज को जोड़ सकता है।
ये सारे पॉइंट्स बहुत विचार करने लायक हैं। किताब में कुछ यादगार कोट्स भी थे।
हाँ बिल्कुल, जैसे वो इल्यूमिनेटर और डिमिनिशर वाली बात, दुनिया में दो तरह के लोग हैं, ये हमें एक लेंस देता है खुद को और दूसरों को देखने का। या फिर ये कि एक महान वार्तालाप करने वाला ऐसे प्रश्न पूछता है जो आपको अपनी राय खोजने में मदद करते हैं। मतलब अच्छा वक्ता वो नहीं जो सबसे ज्यादा बोले, बल्कि वो जो दूसरे को खुद को समझने में मदद करे।
और वो सवाल पूछने वाली बात भी थी, एक अच्छा सवाल सम्मान का संकेत है, ये संकेत है कि आप जवाब से बदलने को तैयार हैं, ये विनम्रता और जिज्ञासा को जोड़ता है।
बिल्कुल। और वो अकम्पनीमेंट वाला, जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होते हैं जो घाटी में है, आपका काम उनके साथ उसमें बैठना है। ये हमारी फिक्स करने वाली आदत को सीधी चुनौती देता है। सच्ची मदद उपस्थिति से मिलती है, समाधान से नहीं।
तो इन सब विचारों को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? कुछ प्रैक्टिकल टिप्स?
हाँ, जैसे घर पर रात के खाने पर दिन कैसा था पूछने के बजाय पूछ सकते हैं, आज का सबसे अच्छा पल कौन सा था, या आज कोई नई बात सीखी। अपने साथी या परिवार के लोगों के उन अनुभवों को जानने की कोशिश करें जिन्होंने उन्हें बनाया है, उनकी जीवन कहानी सुने।
और अगर कोई दोस्त मुश्किल में है
तो सलाह देने की इच्छा को रोक कर बस कहें, मैं बस थोड़ी देर तुम्हारे साथ बैठने आ रहा हूं, या सिर्फ सुने बिना कुछ बोले, वो अकंपनी करने वाला आइडिया।
काम की जगह पर ये कैसे लागू होगा?
और काम की जगह पर भी, एक मैनेजर सिर्फ टारगेट की बात न करके अपने टीम मेंबर से पूछ सकता है कि उनके करियर के सपने क्या हैं, काम के अलावा क्या चुनौतियां हैं, क्या चीज उनके काम को ज्यादा मतलब देगी। इंटरव्यू में सिर्फ स्किल न पूछकर ऐसे सवाल पूछें जिनसे किसी के चरित्र, उसकी सीख का पता चले। जैसे कोई ऐसी नाकामी बताएं जिससे आपने कुछ सीखा हो।
और समाज में अलग विचारों वाले लोगों के साथ?
हाँ, जब किसी ऐसे इंसान से मिलें जिसके विचार आपसे बिल्कुल अलग हों, तो बहस करने के बजाय जिज्ञासा से पूछें, कौन से अनुभव आपको इस सोच तक लाए, या इस मुद्दे पर आपको सबसे ज्यादा चिंता किस बात की है। यहां तक के अजनबियों से छोटी सी बातचीत में भी पूरा ध्यान देने और एक अच्छा सवाल पूछने का अभ्यास किया जा सकता है।
तो इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है आपके लिए?
मेरे लिए शायद ये कि गहरा मानवीय जुड़ाव कोई जादू या किस्मत की बात नहीं है, ये एक अनुशासन है। इसमें कुछ खास हुनर सीखने होते हैं और लगातार उनका अभ्यास करना होता है। और हमें अपनी बातचीत का फोकस बदलना होगा, मैं कैसा दिख रहा हूं से मैं आपको कैसे समझ सकता हूं पर लाना होगा।
और मेरे लिए वो अकम्पनिंग वाला विचार, दुख में बिना कुछ ठीक करने की कोशिश किए बस साथ होना, वो सबसे प्रभावशाली था। और ये जानना भी सशक्त बनाता है कि हम सब में, चाहे हम कितने भी इंट्रोवर्ट क्यों ना हो, एक इल्यूमिनेटर बनने की क्षमता है। अब एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगली बार जब आप किसी से मिलें तो एक पल सोचिए, क्या आप एक इल्यूमिनेटर की तरह पेश आ रहे हैं या डिमिनिशा की तरह। सिर्फ इस जागरूकता से आपकी बातचीत कैसे बदल सकती है। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।